लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो बेघर, अनाथ और युद्धों के शिकार हैं, ताकि उन्हें शिक्षा तक पहुंच की गारंटी और पारिवारिक स्नेह का अनुभव करने का अवसर दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी की चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करते हैं जो सदैव प्रेरितिक कार्य हेतु बुलाई गई है। एवेंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परम धर्माध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कार्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने अपने विगत प्रसारण में एवेंजेली गौडियम के दूसरे अध्याय संकट के बीच समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता के संबंध में यीशु के द्वारा स्थापित नए संबंध को हाँ कहने की चर्चा करते हुए कहा कि हमें दूसरों के चेहरे में उनकी पुकारों में यीशु ख्रिस्त को देखने की जरूरत है। श्रोताओं, हम वहाँ सही चंगाई को पाते हैं क्योंकि हम दूसरों के संग अपने संबंध को जिस तरह स्थापित करते वह हमें सच्चे अर्थ में चंगाई प्रदान करती है, न कि यह हमें कमजोर बनाती है। यह हमारे लिए एक रहस्यात्मक भ्रातृत्व, एक भ्रातृत्वमय चिंतन है, एक भ्रातृत्वमय प्रेम है जो हमें अपने पड़ोसी की भव्यता को देखने में सक्षम बनाता है, जिसके फलस्वरूप हर मानव में हम ईश्वर को देखते हैं, जहां हम ईश्वरीय प्रेम के कारण अपने जीवन में परेशान करने वाली बातों को सहन करने के योग्य बनते हैं। हम अपने हृदय को ईश्वर के दिव्य प्रेम के लिए खोलते और दूसरों की भलाई की चाह रखते हैं, जैसे कि स्वर्गीय ईश्वर उनके साथ करते हैं। यहां हम वर्तमान परिस्थिति में, विशेषकर जहां हम अल्पसंख्यक स्वरूप हैं, ईश्वर के शिष्य की भांति एक समुदाय में रहते हुए दुनिया के लिए नमक और ज्योति बनने हेतु बुलाए जाते हैं। हम निरंतर एक नए रूप में निष्ठा के साथ जीवन जीते हुए सुसमाचार का साक्ष्य देने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। हम सामुदायिक जीवन से अपने को वंचित होने ना दें। श्रोताओं, दुनियावी आध्यात्मिकता जो पवित्रता की और कलीसिया के प्रेम की आड़ में ईश्वरीय महिमा की खोज नहीं करती है, बल्कि यह व्यक्तिगत रूप में मानवीय महिमा की चाह रखती है। यीशु ख्रिस्त फरीसियों को उनके इसी कार्य के लिए फटकारते हैं। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है, तो तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? यह सूक्ष्म रूप में अपनी योजना की खोज करना है, ना कि ईश्वरीय योजना की। यह कई तरह के रूपों में होता है। यह इस बात में निर्भर करता है कि वे किस तरह के व्यक्ति और समूह हैं जिनमें यह रिश्ता है। चूंकि यह सावधानी से विकसित की गई दिखावे में आधारित है, यह हमेशा बाहरी पाप से जुड़ा नहीं होता है। बाहर से इसमें सारी चीजें सामान्य दिखाई देती हैं, जैसे उसे होना चाहिए, लेकिन यदि यह कलिसिया में रिसना शुरू करती तो यह किसी भी अन्य सामान्य नैतिक सांसारिकता की तुलना में अत्यधिक विनाशकारी होती है। इस दुनियादारी को दो परस्पर तरीकों से बढ़ावा दिया जा सकता है। एक है ज्ञानवाद का आकर्षण। यह विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक विश्वास है जो एक निश्चित अनुभव या विचारों और सूचनाओं का एक समूह है जिसका उद्देश्य सांत्वना और प्रबुद्धता है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं में कैद रखता है। वहीं दूसरा लोगों की आत्मलीनता है जो केवल अपनी शक्तियों पर भरोसा करते हैं, जहां लोग अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि वे कुछ नियमों का अनुपालन करते हैं या वे कलिसिया की किसी पुरानी शैली के प्रति अपने को निष्ठावान बनाए रखते हैं। सिद्धांत की कथित सुदृढ़ता या अनुशासन एक संकीर्णतावादी और अधिनायकवादी अभिजात्यवाद की ओर ले जाती है, जहां सुसमाचार प्रचार की अपेक्षा हम व्यक्ति को दूसरों का विश्लेषण और वर्गीकरण करते हुए पाते हैं, जहां व्यक्ति अपने को कृपाओं के लिए खोलने के बजाय अपनी ऊर्जा को निरीक्षण और सत्यापन में समाप्त करता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति ना तो यीशु ख्रिस्त पर या दूसरों की ही परवाह करता है। ये मानव केंद्रित अनुकरणवाद की अभिव्यक्तियां हैं। यह हमारी सोच से परे है कि वास्तविक रूप में सुसमाचार का प्रचार ईसाई धर्म के इन मिलावटी रूपों से निकल कर भी आ सकती है। श्रोताओं, यह कपटपूर्ण दुनियादारी कई दृष्टिकोणों में स्पष्ट है जो विरोधाभासी दिखाई देते हैं, फिर भी सभी में हम एक ही ढोंग को पाते हैं जो कलिसिया में एक स्थान पाने की चाह रखते हैं। कुछ लोगों को हम धर्म विधि, धर्म सिद्धांत और कलिसिया की मर्यादा को लेकर बहुत अधिक चिंतित पाते हैं, लेकिन वे सुसमाचार के संबंध में तनिक भी चिंता नहीं करते जो ईश प्रजा पर एक सही प्रभाव डालती और वर्तमान समय में ठोस जरूरतों को व्यक्त करती है। इस भांति कलिसिया का जीवन अपने में संग्रहालय का एक नमूना या कुछ एक लोगों की संपत्ति बनकर रह जाती है। वहीं दूसरों में यह आध्यात्मिक दुनियादारी सामाजिक और राजनीतिक लाभ या व्यावहारिक मामलों को संचालित करने की उनकी क्षमता में या स्वयं सेवी और आत्म सम्मान के कार्यक्रमों के आकर्षण में छिपी हुई है। यह सामाजिक जीवन में संगोष्ठियों में भोज या स्वागत के कार्य में दिखावे स्वरूप व्यक्त होती है। यह व्यापार की मानसिकता धारण कर सकती है जहां हम प्रबंधन आंकड़ों परियोजनाओं और मूल्यांकनों को पाते जो कलिसियाई प्रजा के हित हेतु नहीं होती बल्कि कलिसिया एक संस्थान के लाभ का ध्यान रखती है। हम इन सारी चीजों में यीशु के शरीर धारण क्रूस और पुनरुत्थान की किसी भी छवि को नहीं पाते हैं। इन सारी चीजों में एक संकुचित और अभिजात समूहों का निर्माण होता जो हाशिए में पड़े लोगों की खोज हेतु नहीं जाते हैं या उनकी परवाह नहीं करते जो सही अर्थ में ईश्वर को पाने की चाह रखते हैं। इस भांति सुसमाचार प्रचार के उत्साह को शालीनता और आत्मभोग के खोखले आनंद से बदल दिया जाता है। श्रोताओं, इस तरह की सोच उन लोगों के लिए शान का कारण होती है जो सत्ता के एक अंश से संतुष्ट हैं। पराजित नायकों की तरह कितनी बार हम बड़े प्रेरितिक योजनाओं के सपने देखते हैं और उनके लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाते हैं, लेकिन यह कलिसिया के रूप में हमारे इतिहास को नकारना है जो अपने में महिमामय है क्योंकि यह त्याग का इतिहास है। इसमें हम आशाओं और दैनिक संघर्षों को पाते हैं जहां कितने ही लोगों ने निष्ठापूर्ण सेवा में अपने जीवन की आहुति दी है। बहुधा हम यह बात करते हुए समय की बर्बादी करते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है, मानो आध्यात्मिक गुरुओं और प्रेरितिक कार्य विशेषज्ञों की भांति जो ऊपर से दिशा निर्देश देते हों। हम अंतहीन विचारों में खोए रहते हैं और इस भांति हम लोगों के संग अपने असल संबंध और उनकी कठिनाइयों को लेकर अपनी दृष्टि खो देते हैं। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारी कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवेंजेली गाउडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 6000 स्कूली बच्चों, शिक्षकों और स्कूल के अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे आधुनिक समय के भविष्यवक्ताओं संत पापा जॉन 23वें और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नक्शे कदम पर चलने का आग्रह किया। वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में शांति के लिए स्कूलों का राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा आयोजित सत्र के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने लगातार शांति के निर्माण के महत्व की बात की और संत पापा जॉन 23वें और मार्टिन लूथर किंग को हमारे समय के भविष्यवक्ताओं के रूप में रखा। संत पापा के संबोधन का मुख्य विषय था शांति का निर्माण करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना। उन्होंने कहा, हम अक्सर शांति के बारे में बात करते हैं जब हमें सीधे तौर पर खतरा महसूस होता है, जैसा कि संभावित परमाणु हमले या हमारे दरवाजे पर लड़े जा रहे युद्ध के मामले में होता है। जिस तरह हम प्रवासियों के अधिकारों में रुचि लेते हैं जब हमारे कोई रिश्तेदार या मित्र प्रवासित हो जाते हैं, वास्तव में हमें हमेशा शांति पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। संत पापा ने तब कहा कि वे शांति के दो प्रमुख गवाहों के उदाहरण की याद दिलाना चाहते हैं। इनमें से पहले संत पापा जॉन 23वें थे। उन्हें अच्छे पापा और शांति का पापा भी कहा जाता है, क्योंकि 1960 के दशक में उनकी कठिन शुरुआत में बर्लिन की दीवार का निर्माण, क्यूबा संकट, शीत युद्ध और परमाणु खतरों के बीच उन्होंने प्रसिद्ध और भविष्यवाणी विश्व पत्र पाचेम इन तेरिस यानी पृथ्वी पर शांति प्रकाशित किया। यह एक ऐसा आह्वान था जिसने कैथोलिक समुदाय से परे दुनिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया। संत पापा ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी उल्लेख किया। नस्लीय भेदभाव से चिन्हित अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता की दुनिया का सपना दिखाया। उन्होंने कहा, मेरा एक सपना है कि मेरे चार छोटे बच्चे एक दिन एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उन्हें उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से आंका जाएगा। इसके बाद संत पापा ने एकत्रित स्कूली बच्चों को सीधे संबोधित किया और आप आज की दुनिया के लिए आपका सपना क्या है? मैं आपको संत पापा जॉन 23वें और मार्टिन लूथर किंग की तरह बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार की सुबह परम धर्म पीठ या लैटिन अमेरिकन कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे ग्वादालूपे की माता मरियम से प्रेरिताई के मार्ग में हमारी मदद करने के लिए कहें, जिसके लिए प्रभु हमें बुलाते हैं और जाने और लौटने के महत्वपूर्ण यात्रा कार्यक्रम में हमारा साथ दें, जो यीशु से शुरू होकर भाइयों तक जाता है और फिर यीशु से मिलने के लिए हम भाइयों के साथ वापस लौटते हैं। रोम में बिताए गए प्रशिक्षण व अध्ययन के वर्षों के बारे में बात करते हुए संत पापा ने कहा कि यह अनुभव अनुग्रह के समय को भी चिन्हित करता है। ईश्वर न केवल बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर पर बल्कि प्रशिक्षण को पक्का करने के लिए अवसर देते हैं। विश्वव्यापी कलीसिया की समृद्धि और विविधता का अनुभव करने का भी अवसर देते हैं। उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे यह समृद्धि और विविधता लैटिन अमेरिका के लोगों की विशेषता है। वे सौंपे गए झुंड की देखभाल करने के लिए वापस लौटेंगे। संत पापा ने उनकी प्रेरितिक संवेदनशीलता और आउटरीच कार्यों को भी रेखांकित किया, उन्हें हमेशा लोगों के चरवाहे बनने को कहा। संत पापा फ्रांसिस ने फिर सभी से ईश्वर के लोगों के लिए अपनी प्रेरितिक सेवा के महत्व को याद रखने और किसी भी प्रकार याजकीयवाद से बचने, अपनी जड़ों को याद रखने और हमेशा अपने लोगों की अगुवाई और उनके साथ रहने के लिए प्रभु से कृपा मांगने का आग्रह किया। वे उन लोगों के बीच अपनी सेवा प्रदान करें जिन समुदायों से वे आते हैं। उधर सोमवार को अमेरिका कैथोलिक पत्रिका अमेरिका मैगजीन ने संत पापा फ्रांसिस के साथ एक व्यापक साक्षात्कार को प्रकाशित किया। यह पहली बार है कि संत पापा फ्रांसिस एक अमेरिकी पत्रिका के संपादकों के साथ एक साक्षात्कार के लिए सहमत हुए हैं। साक्षात्कार 22 नवंबर को वाटिकन में उनके निवास संत मार्था में आयोजित किया गया था और स्पैनिश भाषा में अमेरिकी जेसुइट पत्रिका के 5 प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किया गया था। साक्षात्कार में अमेरिकी कलीसिया में ध्रुवीकरण, जातिवाद, महिलाओं के अभिषेक पर कलीसिया की शिक्षा, सामाजिक मुद्दों पर संत पापा का रुख, यूक्रेन में युद्ध, चीन के साथ वाटिकन का संबंध और परमाधिकारी के रूप में उनके कार्य से संबंधित प्रश्न थे। फादर मेलोन ने संत पापा से यह पूछकर साक्षात्कार की शुरुआत की कि वे अपने कार्यों को निभाते हुए किस तरह से इतने शांत और खुश रह सकते हैं। संत पापा ने उत्तर दिया कि लोगों के साथ रहने से उन्हें हमेशा बहुत खुशी मिलती है और जो बात उन्हें खुशी का अनुभव कराती है वह यह आश्वासन है कि ईश्वर उनके साथ हैं। उन्होंने कहा, मेरे पूरे जीवन में ईश्वर ने हमेशा मुझे अपने रास्ते पर निर्देशित किया है। कभी कभी मुश्किल क्षणों में हमेशा आश्वासन देते हैं कि कोई अकेला नहीं चल सकता। संत पापा से अमेरिका में धर्माध्यक्षों के सम्मेलन और कैथोलिक विश्वासियों के बीच विश्वास और नैतिकता पर बढ़ती दूरी के बारे में भी पूछा गया। इस संबंध में उन्होंने धर्माध्यक्षों के सामूहिक संगठनों के बजाय व्यक्तिगत धर्माध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और उनके झुंड के साथ उनके प्रेरितिक संबंध पर ध्यान दिया। संत पापा ने कहा कि यीशु ने धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों को स्थापित नहीं किया, यीशु ने धर्माध्यक्षों को नियुक्त किया है। और संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार 29 नवंबर को ट्वीट कर सभी ख्रिस्तियों को आगमन काल में रोजमर्रा के कार्यकलापों में प्रभु की उपस्थिति को पहचानने हेतु सजग रहने के लिए प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, ईश्वर हमारे जीवन की सबसे सामान्य परिस्थितियों में छिपे रहते हैं। वे असाधारण घटनाओं में नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजों में आते हैं। हमारे दैनिक कार्य, एक आकस्मिक मुलाकात, किसी जरूरतमंद व्यक्ति में, यहीं पर प्रभु हैं जो हमें बुलाते हैं और हमारे कार्यों को प्रेरित करते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।